हरे कृष्णा जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी
गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी
जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे
राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद
नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर के द्वारा आयोजित इस प्रवचन के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये वर्ष का अंतिम दिन है, यद्यपि ये कहना भी उचित होगा कि जिस दिनदर्शिका के अनुसार इसे हम अंतिम दिन मानते हैं वो वैदिक दिनदर्शिका तो नहीं है। वैसे भारत में अनेक ऐसे दिनदर्शिकाएं होती हैं, कैलेंडर्स होते हैं, और हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के कारण हमारे नवीन वर्ष को गौर पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं या गौर पूर्णिमा के बाद वाले दिन से प्रारंभ करते हैं। परंतु खैर जो भी हो, क्योंकि अब इस पाश्चात्य देश की दिनदर्शिका के लिए की मान्यता जो है बहुत अधिक है सारी दुनिया में, और हम सब इसी तरह से बात करते हैं 2019, 2020, 2021, तो एक नवीन वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। चाहे हम वर्ष की शुरुआत किसी एक दिन के ऊपर माने या किसी दूसरे दिन पर माने, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि समय बीतता जा रहा है, काल चक्र घूम रहा है, घूमता रहेगा, और जैसे जैसे काल चक्र घूमेगा कभी रुकेगा नहीं, तो वैसे वैसे हमारी आयु घटती रहेगी। वैसे आज सुबह भी हम प्रवचन दे रहे थे तो उसमें श्रीमद् भागवत के इस प्रसिद्ध श्लोक का उल्लेख कर रहे थे कि आयुर्हरति वै पुंसां उद्यन अस्तम च यनसौ तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जैसे जैसे सूर्योदय होता है, आसमान में सूर्योदय सूर्य जो है वो चढ़ते रहता है, फिर उतर जाता है, उसका सूर्यास्त हो जाता है, एक दिन बीत जाता है। तो ऐसे हरेक सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद साधारण व्यक्तियों की जीवन की अवधि की एक दिन घट जाती है, मृत्यु के एक दिन निकट व्यक्ति पहुंच जाता है। और जब मृत्यु का सामना कोई व्यक्ति करता है तो यमराज के दरबार में निर्णय लिया जाता है कि उसका अगला जन्म क्या होगा, कहाँ होगा, किस परिस्थिति में होगा, कौन से योनि में होगा। तो व्यक्तियों को साधारणतः ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि उनका अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा। लोगों को ये कोई बिल्कुल कल्पना ही नहीं है साधारणतः कि एक अगला जीवन होगा भी। वो सोचते हैं कि किसने देखा है अगला जीवन, यही एकमात्र एक ही जीवन है, बस इसी को हमें सर्वस्व मानना चाहिए और जब तक जीवित हैं सुखी रहना चाहिए। यावत जीवित सुखम जीवित भस्मी भूतस्य देहस्य किम पुनरागमनो भवेत। तो इस मृत्यु के बाद कोई पुनर्जन्म है नहीं है किसे पता, क्या प्रमाण है, किसने देखा है। इसलिए जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक हम खूब भोग करें, आराम करें और ऐसे सुखी रहकर जीवन बिताएं। तो इस तरह से हमारे भविष्य के बारे में जब हम दृष्टिहीन रहते हैं, अंधे हो जाते हैं, तो फिर भविष्य उज्जवल कैसे होगा। जैसे कोई साधारण व्यक्ति भी, एक बच्चा भी अपने भविष्य की तैयारी करता है, जब वो पाठशाला में जाके पढ़ाई ठीक से नहीं करता है या कोई उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं रहता है तो उसके माता पिता उसे चेतावनी देते हैं, डांटते हैं, इस तरह से व्यवहार करोगे तो फिर तुम्हारा भविष्य कैसे अच्छा होगा, आगे चल के कैसे कुछ अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, कैसे पैसे कमाओगे, कैसे अपना भरण पोषण करोगे। तो इस तरह से बच्चा भी समझ लेता है कि मैंने यदि ठीक से पढ़ाई नहीं की तो आगे मेरा कोई भविष्य नहीं रहेगा। फिर आगे चल के विश्वविद्यालय में जाता है बच्चा, फिर वो सोचने लगता है अपने भविष्य के बारे में कि आगे चल के मैं क्या करूँगा, व्यवसाय मेरा क्या होगा, जीवन निर्वाह कैसे होगा। तो इस तरह से जीवन के हर एक स्तर में हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, परंतु ये हमारी जो सोच है भविष्य के बारे में वो केवल मृत्यु तक सीमित है, सीमित रहती है साधारणतः। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक सभ्यता में हमें यह सिखलाया जाता है कि हम जब भविष्य के बारे में सोचते हैं, और सोचना चाहिए, तो केवल इस जीवन के अंत तक नहीं सोचना चाहिए, हमें आने वाले जन्मों की तैयारी करनी चाहिए, विशेष रूप से जो हमारा अगला जन्म होगा उसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे करनी वैसे भरनी, तो जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें अगला जन्म प्राप्त होगा। इसलिए यदि हम अंधे रह जाएंगे इस बारे में, सोचेंगे भी नहीं, तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात हो जाएगी। तो काल चक्र किसी के लिए रुकता नहीं है। काल ये नहीं सोचेगा कि ये मासूम बच्चा है या ये तो बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं, ये बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कोई भी व्यक्ति काल चक्र से नहीं बच सकता। और इस तरह से हमारे न जाने कितने लाखों करोड़ों जन्म बीत चुके हैं, ऐसे ही सोच सोच के कि बस यही एक जीवन सर्वस्व है और पिछले किसी जीवन की जानकारी तो है नहीं, और भविष्य में जो जीवन आएंगे उनकी भी कोई जानकारी नहीं है, तो बस ऐसे ही चलते रहते हैं, हम बद्ध अवस्था में रह जाते हैं। परंतु शास्त्रों में बताया, वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि हमें सोचना चाहिए कि काल चक्र का प्रभाव किस प्रकार से होता है, ये काल है क्या। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में कहा गया है, कालो बलियान बलिनाम भगवान ईश्वरो व्ययः, प्रजा कालयते क्रीडन पशु पालो यथा पशून। ये जो काल है, बलियान बलिनाम, बलिनाम मतलब जो बहुत बलवान व्यक्ति या शक्तियां हैं उनसे सबसे अधिक शक्तिशाली है। काल से काल का मुकाबला करने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है, तो ये बहुत बलवान है। क्यों? और ये अव्यय है, इसका कभी नाश नहीं होता इस भौतिक सृष्टि में। ऐसे क्यों? भगवान ईश्वर है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति होने के नाते ये के कारण ये भगवान से अभिन्न है। तो भगवान अपने काल शक्ति के द्वारा प्रजा कालयते, प्रजा मतलब यहाँ जितने भी जीव हैं भौतिक जगत में उनका नियंत्रण करते हैं। क्रीडन जैसे खेल खेल में, उनकी लीला में। और किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं जीव प्राणियों की अपनी काल शक्ति के द्वारा? पशु पाल यथा पशुन, जिस प्रकार से एक ग्वाला होता है वो अपने गवों की रक्षा करता है, चराने ले जाता है पशुओं को, फिर कभी यहाँ जहाँ पर कोई गोचर भूमि अच्छी हो, जहाँ घास उपलब्ध हो, जहाँ पर जल मिले या पशुओं को पीने के लिए, तो अलग अलग स्थानों में ले जाता है। कहीं भैंस या गाय या बैल इधर उधर भटक जाए तो उनको फिर से लेके आता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान की काल शक्ति सारे प्राणियों का नियंत्रण करती है, और हर एक जन्म ये हमारे आध्यात्मिक विकास का एक स्तर है, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हम इस चक्र में घूमते हुए अनुभव नहीं कर पाते हैं, नहीं जान पाते हैं कि किस तरह से ये शुद्धिकरण की क्रिया है, परंतु है। तो काल बहुत शक्तिशाली है, काल के कारण ही कर्म आदि सब आगे हम कर पाते हैं। कालोस्मि भगवद गीता में भी भगवान यही कहते हैं। तो काल का प्रभाव इस तरह से होता है कि कोई समझ भी नहीं पाता ये काल शक्ति है क्या। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी प्रयास करते हैं इसको समझने के लिए, परंतु असफल हो जाते हैं। केवल काल एक नदी की तरह बह रहा है, इतना हम कह सकते हैं, इतना हम समझ सकते हैं। 7 बजे, फिर अभी थोड़ी देर में 8 बज जाएंगे, अभी थोड़ी देर में फिर 9 बज जाएंगे, बस ये प्रवाह जो है, हम प्रवाह को देखते जा रहे हैं, हम बहते जा रहे हैं इस प्रवाह में। परंतु ये नदी किस प्रकार की है, ये प्रवाह कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कहाँ इसका अंत होगा, ये काल रूपी नदी का हम समझ नहीं पाते हैं। काल के कारण ये भौतिक शक्ति, ये भौतिक जगत बहुत भयानक हो जाता है। क्यों? क्योंकि काल हर चीज का परिवर्तन करता है। हम अनुभव करते हैं कि भौतिक जगत में हर वस्तु, हर व्यक्ति, सब कुछ परिवर्तनशील है। न केवल हमारे भौतिक शरीर बदलता है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी बदलता है। हम कहते हैं कि नहीं, अब मेरा मन बदल गया, अब मैं पहले यहाँ जाना चाहता था, अब मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ नहीं जाऊँगा, दूसरी जगह जाऊँगा। हर क्षण हम बदलते रहते हैं, सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए ये शब्द काल कहा गया है। काल जो कि हर चीज का परिवर्तन करता है, जिसका आकार जिसका रूप बदलते रहता है। तो यहां पर सब कुछ बदलते रहता है क्योंकि काल यहां प्रधान है। काल नहीं होता तो हम कर्म भी नहीं कर सकते, और इसलिए फिर हमें जन्म लेना पड़ता है। जन्म के बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर थोड़े परिपक्व हो जाते हैं, फिर और कोई जैसे आगे चल के कोई गृहस्थ आश्रम चल के फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। जो ऐसे 6 स्तरों से हम गुजरते रहते हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसे नहीं है। अव्यक्तो क्षर इत्युक्तस्तम आहु परमाम गतिम यद गत्वा अतिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भौतिक जगत जो है, क्योंकि ये काल शक्ति के प्रभाव के अंतर्गत है, तो जब ये व्यक्त अवस्था में होता है तो इसका सृजन होता है, पालन होता है, फिर संहार होता है। संहार के बाद में फिर ये अव्यक्त हो जाता है, अप्रकट हो जाता है। ये शक्ति है परंतु इसका रूप नहीं रहता, भिन्नता नहीं रहती। ये सत्वगुण रजगुण तमोगुण ये वर्गीकरण नहीं होता है। तो फिर संहार के बाद में अव्यक्त रूप में ये भौतिक सृष्टि या भौतिक शक्ति रह जाती है। पुनः जब भगवान की इच्छा होती है तो सृष्टि का सृजन करते हैं, और इस तरह से पुनः सृजन पालन संहार। तो व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, इस तरह से ये सब कुछ चलता रहता है। तो ये है भौतिक सृष्टि। परंतु भगवान कहते हैं कि ये व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि के परे भी एक और सृष्टि है, परंतु वो सृष्टि सनातन है। वहां कोई व्यक्त अव्यक्त की बात नहीं है। हमारे लिए वो सब अव्यक्त है क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते। हमारे इंद्रियों के परे है ये आध्यात्मिक जगत, नहीं हम उसे समझ पाएंगे कभी भौतिक इंद्रियों के द्वारा। तो वहां पर जो भी कुछ है वो सनातन है, अविनाशी है। यहां पर सब कुछ नश्वर है, वहां पर सब कुछ सच्चिदानंद है। आत्मा भी सच्चिदानंद है, अविनाशी है। तो फिर भगवान कैसे अविनाशी नहीं होंगे? जब आत्मा का विनाश नहीं हो सकता तो फिर भले भगवान का विनाश कैसे हो सकता है? जब आत्मा का जन्म नहीं होता तो भले भगवान का जन्म कैसे हो सकता है? भगवान केवल प्रकट होते हैं, अप्रकट हो जाते हैं बाद में, परंतु भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि भगवान का दिव्य शरीर है। जड़ पदार्थों से भगवान का शरीर नहीं बना हुआ है, इसलिए हम कभी भी भगवान श्री कृष्ण को वृद्ध अवस्था में नहीं देखते हैं। भगवान तरुण अवस्था में ही रहते हैं, गोलोक वृंदावन में। वहां पे काल शक्ति का प्रभाव भिन्न है, वहां पे सब कुछ ताजा है, यहां पर सब कुछ घिटा घिसा पिटा लगता है। हम किसी चीज को अब खा लेते हैं तो अब लगता है कि बस अभी और नहीं खाना है, फिर 5-6 घंटे बाद फिर भूख लगती है, फिर इच्छा होती है कि चलो फिर से खा ले। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसे हम किसी भी चीज से ऊब नहीं जाते हैं। यहां पर ऊब जाते हैं वस्तुओं से, क्योंकि सारे वस्तुएं जो है घिसे पिटे हो जाते हैं, दिलचस्पी नहीं रहती इन चीजों में। अरे ये तो ठीक है, कर लिया, अभी कुछ मन नहीं कर रहा है इसके लिए। परंतु आध्यात्मिक जगत में सब कुछ ताजा होता है, वहां काल का प्रभाव कुछ अलग ही होता है, और वहां पर सब कुछ सच्चिदानंद होने के कारण यह भौतिक जगत में जिस प्रकार के हम दुखों को, कष्टों को आदि देखते हैं, चिंताओं को, वो वहां पर बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। तो हमें यहां पर भौतिक जगत में रहते हुए सोचना चाहिए कि हम वहां पहुंचे कैसे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए वहां पहुंचना। पुनर्जन्म में जन्म तो होना ही है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जब जन्म हुआ है मृत्यु तो होगी, और मृत्यु होगी तो फिर पुनर्जन्म भी होगा। परंतु प्रश्न यह है कि किस तरह का पुनर्जन्म। यदि हमने भगवान श्री कृष्ण की बातों को नहीं माना तो इसी तरह से जन्म मृत्यु के चक्र में अटके रह जाएंगे। यदि भगवान श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार हमने कार्य किया और हमारे जीवन को बिताया और हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए तो फिर हमारा अगला जन्म अवश्य होगा, परंतु भगवान के धाम में होगा। हमारा शरीर दिव्य होगा, सच्चिदानंद होगा। अब जिस तरह हमारा शरीर जड़ पदार्थों से बना हुआ है तो वैसा शरीर हमें नहीं मिलेगा। ये शरीर तो हमें सदैव कष्ट देता है। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम किम औषधिम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। तो ऐसे कहा गया है मुकुंदमाला स्तोत्र में, कवि कुलशेखर महाराज कहते हैं कि इदम शरीरम, ये जो शरीर है शतसंधि जर्जरम, इसमें सारे जो संधियां हमारी हैं जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो जकड़ जाते हैं और फिर हमें बहुत दर्द होता है इन संधियों में। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम, इसका पतन तो निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता इस शरीर के विनाश को। परिणाम अपेशलम, जो भी सौंदर्य हमारा है वो भी नश्वर है। किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, तो राजा कुलशेखर कहते हैं कि हे मूढ़ व्यक्ति, क्यों केवल दवाई 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 के पीछे लगे रहे हो, ये दवाई से क्या होगा। निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, तो कृष्ण नाम लो, कृष्ण कथा लो, ये निरामय है, ये ऐसी एक औषधि है जिससे जिसके द्वारा हम भौतिक शरीर के परे हो सकते हैं, हमें आध्यात्मिक शरीर मिल सकता है। हाँ, जब तक भौतिक शरीर है थोड़ा ख्याल तो रखना होगा हमें, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दवाई नहीं लेनी चाहिए हमें, परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इतना मग्न नहीं होना चाहिए हमारे शरीर में कि बस इस शरीर को ही हम सर्वस्व माने और बस दवाई 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 बस इन चीज़ों के पीछे ही भागते रहें और आत्मा के बारे में सोचें नहीं। ये मूल बात है। तो हमें पुनर्जन्म तो मिलेगा, तो हमें ऐसे जीवन बिताना है जिसके द्वारा हमारा पुनर्जन्म भगवान के धाम में होगा और हमारा जो शरीर होगा उस समय वो आध्यात्मिक होगा, भौतिक नहीं होगा। तो काल के प्रभाव में अंतर है, भौतिक जगत में जिस प्रकार से काल का प्रभाव है वैसे आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं है। वहां पर भी काल है, परंतु वहां पर काल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की सहायता करती है और वहां पर भगवान की लीला और भी मधुर हो जाते हैं सारे काल के प्रभाव से, और काल के प्रभाव से वहां सब किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का घटन नहीं होता, किसी भी चीज का या व्यक्ति का का विनाश नहीं होता है। तो ये अंतर है। यहां पर तो काल बहुत ही भयानक है, इसलिए काल का सामना हमें कैसे करना चाहिए, काल का सदुपयोग करके। कालम नये दखिलमित्युपदेश सारम, तो उपदेशों का, समस्त उपदेशों का सार है, ऐसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें सारा समय तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, तो हमें हमारे समय का प्रयोग करना चाहिए श्री कृष्ण के नामोच्चारण में, श्री कृष्ण की कथा सुनने में, बोलने में, कृष्ण की सेवा करने में। तो ऐसे करेंगे उत्तम श्लोक वार्तया, ऐसे हमारा दिन बीत गया तो फिर सूर्योदय और सूर्यास्त का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। शरीर के ऊपर प्रभाव अवश्य होगा, परंतु हमारी चेतना के ऊपर नहीं होगा। हमारा भविष्य उज्जवल रहेगा, भगवान के धाम में जन्म मिलेगा। तो यही एकमात्र उपाय है, काल का यही एक उपयोग, इसी तरह से हम उपयोग करेंगे तो समय बर्बाद नहीं करना है, हम भगवान की सेवा को टालते रहेंगे तो फिर हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। एक बच्चा था, उसकी आदत थी कि वो हर चीज़ को टालते रहता था। तो टालता रहता तो ऐसे सारा जीवन उसका ऐसे ही बीत गया, कभी भी कोई वस्तु अपने सही समय पर नहीं करता था। तो खैर वो भक्ति भी कर रहा था थोड़ा बहुत। तो जब मृत्यु हो गई उस व्यक्ति की, तो सारे यमदूत आए। यमदूतों ने देखा कि इसे हम नरक ले जाएंगे, तो सारी सुनवाई सुनवाई हो गई वगैरह वगैरह कि हम ये ले जाएंगे। तो बेचारे ये व्यक्ति सब सुन रहे थे, बड़े परेशान हो गए थे। तो खैर उसको ले गए, ऐन वक्त पर फिर भगवान आए और कहा कि नहीं, इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया, इसलिए इसे छोड़ दो अभी। तो उस व्यक्ति ने फिर भगवान से पूछा कि ऐन वक्त तक आप क्यों आए, मृत्यु के बाद अब तक कितना समय बीत गया, कितने परेशानी हो गई हम, कितनी परेशानी हो गई हमको, इतने जल्दी इतने देर से क्यों आए, विलंब क्यों हो गया आपको आते आते। तो भगवान ने उत्तर दिया, भाई तुम जब मेरी सेवा करते थे तुम भी तो आराम से आते थे ना, करते थे ना सब कुछ, समय पे तुम तो कुछ करते नहीं थे, तो मेरी सेवा की बात आ जाती थी तो तुम टालते रहते थे, कर भी लेते थे तो कभी अपने समय पर कर लेते थे। तो यदि तुमने इतना समय बिताया आराम से सब बात की, तो मैं भी आराम से आऊंगा। यदि तुम आतुर रहते मेरी सेवा के लिए तो मैं भी बड़े आतुरता से चले आता यहाँ पर। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। जैसे व्यक्ति भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहता है, जैसे संबंध रखना चाहता है, वैसे भी भगवान करते हैं, उस जीव की इच्छा पूर्ण करते हैं भगवान। इसलिए हमें ये बहुत ही अच्छी तरह से जान लेना है कि ये काल का प्रभाव कैसे होता है और काल का उपयोग, सदुपयोग हमें कैसे करना है। इसलिए काल इस विषय को समझाने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे प्रसंग हैं। श्रीमद् भागवत में कई प्रसंग हैं, महाभारत में हैं, जगह जगह वैदिक शास्त्रों में ऐसे पाए जाते हैं। तो काल के भयानक स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए और इस बात से भी हम सबको सूचित करने के लिए कि भौतिक जगत कितने दुख का स्थान है, महाभारत में विदुर जी धृतराष्ट्र को एक कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति था तो किसी एक घने जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहा होगा व्यक्ति, तो उसने जब वो घुसा तो वहां देखा कि एक जंगल, कितने सारे जंगल हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बहुत विशाल ऐसे स्थान है और इसके बीच में से होकर हम मुझे जाना है और जंगल पार करके वहां दूसरी ओर पहुंचना है, बहुत मुश्किल है। तो जैसे ही ये व्यक्ति अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि इतना घना जंगल है यहाँ पर और इतने सारे खतरनाक जानवर हैं सब जगह, कोई शेर है, कोई सिंह है, कहीं भालू है, और ये बेचारा अपने आप को बचाते बचाते इधर उधर भाग रहा था। कभी किसी एक जानवर का सामना करता तो उससे दूर भाग जाता, कभी दूसरे प्राणी के सामने आ जाता उससे अपनी जान बचाने के लिए कहीं और भाग जाता। इस तरह से वो भागता रहा और ऐसे भागते भागते फिर वो जब आ गया, उसे पता ही नहीं चला कि वो किस दिशा में जा रहा है। फिर उसने देखा कि ये जो एक वन है, जिस वन के अंदर मैं हूँ, इसके पीछे एक जाली है यहाँ पर जो इसको घेर रही है, और यहाँ पर एक बहुत भयानक, एक राक्षसी के समान एक कुरूप एक महिला है, विशाल शरीर है उसका, और वो उसे पकड़ने के लिए आ रही है। तो वैसे भी यह व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था इस घने जंगल को देखकर और फिर इन जानवरों को देखकर, तो यहाँ वहाँ फिर अब इस महिला को देख लिया तो और भी घबरा गया और भागता रहा और अचानक क्या हो गया, वो नीचे कुएं में गिर गया। कुएं को वो देख नहीं पा रहा था, नहीं पाया क्योंकि कुएं के ऊपर ऐसे सारे घास वास वगैरह, थोड़ी लताएं वगैरह सब थी, इसलिए ऊपर से दिखाई नहीं पड़ा कि यहाँ कुआं है। तो दौड़ते दौड़ते फिर ये इस कुएं के अंदर गिर पड़ा। परंतु भाग्य उसका था कि वो सीधे कुएं के अंदर नहीं गिर पड़ा, नीचे तक नहीं गिर पड़ा, क्योंकि पानी नहीं था इस कुएं में। यदि सीधे गिर पड़ता तो सर ठोकर लग जाता जमीन से, उसकी मृत्यु हो जाती। तो खैर उसके पैर जो हैं उन लताओं में अटक गए। वहाँ उस कुएं के तट पे कोने पे एक पेड़ था, तो उस पेड़ के शाखाओं से ये लताएं जो टंग रही थी उनमें उसके टांगें अटक गईं, और इस तरह से उल्टा लटक गया। तो उसका सर जो है वो नीचे की ओर था इस कुएं के अंदर, और उसके पैर ऊपर की ओर थे। तो ऐसे उसकी परिस्थिति थी। और जब उसकी आंखें फिर से खुली तो उसने देखा कि इस कुएं के नीचे जमीन पर एक भयानक सांप है, अजगर, जिसने अपने जो बड़े मुख को खोला हुआ है। वो सोच रहा है कि कब ये व्यक्ति मेरे मुंह के अंदर गिर जाएगा, मैं इसको निगल लूं। तो ये इसने देखा तो बहुत घबरा गया कि अरे अब क्या किया जाए। तो ऊपर की ओर देखा तो ऊपर क्या था, ऊपर एक हाथी था, और ये कोई साधारण हाथी नहीं था। इस हाथी के 6 मुख थे और उसके 12 पैर थे, और ये भी हाथी जो है ये भी धीरे धीरे से वो उस कुएं के तट तक आ गया था। और फिर उसने देखा उस व्यक्ति ने कि जिन लताओं से वो टंग रहा था फिर, और जो पेड़ था उसकी जटाओं को बहुत सारे चूहे काट रहे थे। थोड़े चूहे सफेद थे, थोड़े चूहे काले थे, और उस वृक्ष के ऊपर किसी एक शाखा में वहाँ मधुमक्खियाँ बहुत थीं, और वो मंडरानी रियाँ वहाँ पर घूम रहे थे और कभी उसको आके चुभ रहे थे, भी उस व्यक्ति को डस रहे थे उसे। तो बड़ा भयानक स्थान था, उसकी परिस्थिति तो बस वर्णन इसका करना मुश्किल है। लेकिन कभी कभी वहाँ उस वृक्ष की डाली से जहाँ मधुमक्खियों ने अपने मधु को छुपा के रखा था, वहाँ से एक आध थोड़े थोड़े जो बूंद जो है शहद के, मधु के, वो गिर पड़ते, और वो इस तरह से लटका हुआ था कि सीधे उसके गाल पे आके गिरता वो बूंद, और आके फिर उसके मुख के अंदर जाता। तो अपनी जीभ को बाहर निकाल के फिर वो चाट लेता इस मधु के या शहद के बूंद को। तो जब ऐसे किया तो उसे बहुत अच्छा लगता, वाह भाई कितना अच्छा स्वाद है, कितना मीठा है ये। फिर उसे कोई भवरा जो है वो डस लेता। तो इस तरह से वो समय बिता रहा था, और ये उसकी परिस्थिति थी। अब क्योंकि ये चूहे काटे जा रहे थे तो ये निश्चित था कि पेट टूट जाएगा, ये लताएं कट जाएंगी और ये नीचे गिर जाएगा उस अजगर के मुंह में, और ऊपर चढ़ना भी संभव नहीं था, वहाँ पर भी ये हाथी वगैरह थे। तो ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति इस व्यक्ति की। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि अरे विदुर, मैं समझा नहीं, ये कहानी तो तुमने बता दी, परंतु इसका मतलब क्या है, तात्पर्य बताओ कुछ। तो फिर विदुर ने कहा कि देखिए, ये जितने भी से ये सारा प्रांत जो है ना, ये सब जिसमें जंगल भरे हुए हैं, ये है ये संपूर्ण भौतिक सृष्टि। और ये जो वन है जिसमें कि ये व्यक्ति प्रविष्ट हो गया, वो है हमारा एक जीवन, हमारा सीमित जीवन इस भौतिक सृष्टि में। वो व्यक्ति जो है ना, वो आत्मा की तरह है जो इस भौतिक जगत में आके गिर पड़ा है, और उसे भौतिक शरीर मिल गया है। तो ये भौतिक शरीर क्या है? वो जो कुआं है वो भौतिक शरीर है। तो ये आत्मा को, आत्मा जो है इसे भौतिक शरीर प्राप्त हो गया, उसकी दशा देखो। तो ये सारे जंगली जानवर कौन हैं जो सारे उस जंगल में घूम रहे हैं? तो वो हैं सारे सारे जो व्याधियां हैं, बीमारियां, रोग हैं, वो हैं जो कि सताती रहती हैं यहाँ पर प्राणियों को। और फिर वो जो बहुत विशाल एक राक्षसी थी, वो कौन है? वो है बुढ़ापा, वृद्धावस्था। जिस तरह से वो राक्षसी इस व्यक्ति का पीछा कर रही थी, उसी तरह से बुढ़ापा हमारा पीछा करता है। हर एक व्यक्ति को बूढ़ा होना होगा, ये हालांकि कोई चाहता नहीं है कि बूढ़े हो जाएं हम, परंतु बुढ़ापा आकर ही रहेगा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार चीजें तो निश्चित है। बुढ़ापा जब आ जाएगा तो दुर्बलता आ जाती है, व्याधियां बढ़ जाती हैं, कष्ट बढ़ जाते हैं, मानसिक शक्ति, बुद्धि सब कमजोर होने लगती हैं, इंद्रियां कमजोर होती हैं, तो तरह तरह की समस्याएं आती हैं। तो कोई नहीं चाहता, हमारा सौंदर्य भी खत्म हो जाता है, परंतु ये बुढ़ापा आएगा। हर एक व्यक्ति का पीछा करता है ये बुढ़ापे, और ये राक्षसी पीछा करती है और सबको पकड़ लेती है आखिर। और फिर ये कुएं में ये जो सांप नीचे था, वो कौन है? वो काल शक्ति है। काल की तुलना कभी कभी एक अजगर से की जाती है, एक बड़े सांप से। अब जब से, जिस क्षण से हमारा जन्म हो जाता है, तब से हम इस काल रूपी सांप के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। और जब तक मृत्यु हो जाए, तब तक हमारा शरीर काल सर्प के मुंह के अंदर 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 हम जाते रहते हैं। और जब पूरी तरह से उस काल रूपी सांप के अंदर चले जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि मृत्यु हो गई। तो ये निश्चित है हमारे लिए। तो फिर अभी वहां पर जो चूहे हैं, वो कौन है? वो चूहे हैं दिन और रात। सफेद चूहे दिन हैं, काले चूहे रात हैं। दिन और रात बीतते जाते हैं, इससे जीवन की अवधि घटती रहती है। और वहां पे जो वृक्ष है, वो हमारी जीने की इच्छा है। और जो भंवरे हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो सब हमारी तरह तरह के जो कामनाएं हैं ना, जो वो हैं। और जो मधु है, जो शहद है, जो कि उस पेड़ से गिरता है, वो है इंद्रिय इंद्रिय भोग। और जो जो हाथी है ऊपर, जिसके 6 मुख हैं, 6 मुख अर्थात 6 ऋतु, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा इत्यादि, और उसकी जो 12 पैर हैं, वो 12 महीने हैं। ये भी एक काल का ही रूप है। तो इस प्रकार से व्यक्ति बहुत ही जटिल परिस्थिति में अटक जाता है। यहाँ पर उसका कोई भविष्य नहीं है। तो ऐसे है एक बद्ध जीव की अवस्था। तो बद्ध जीव की अवस्था को के बारे में सुनकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए, भाई मेरी तो परिस्थिति इतनी खराब तो नहीं है ना, सुविधाएं कितने हैं हमारे जीवन में, ये क्या सुविधा है? जैसे वो थोड़े थोड़े शहद के बूंद हम चखते जा रहे हैं, बस यही सुविधा है। हमें अपने परिस्थिति को जान लेना चाहिए, ठीक उस व्यक्ति की तरह है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल सही बात विदुर जी ने कही थी। तो जो साधारण व्यक्ति के लिए कोई उपाय ही नहीं है। आज ही हम प्रभुपाद जी के प्रवचन को सुन रहे थे। सुबह दोपहर हम प्रसाद के समय प्रभुपाद जी के प्रवचन को सुनते हैं। तो एक और बात प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जब किसी कोई व्यक्ति जो है कुएं में गिर पड़ा है, और उसको बाहर निकालने के लिए ऊपर से कोई व्यक्ति रस्सी अंदर छोड़ देता है, तो यदि उसने रस्सी वो पकड़ लेता है अच्छी तरह से, तो ऊपर जो आदमी फिर उसको खींच के, रस्सी को खींच के उस व्यक्ति को कुएं से बाहर निकाल ले सकता है। परंतु यदि जो कुएं के अंदर व्यक्ति है वो यदि उस रस्सी को पकड़ने से इनकार करता है कि नहीं नहीं मैं रस्सी नहीं पकड़ूंगा, तो फिर क्या किया जा सकता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब इस भौतिक जगत में पड़े हैं, इस संसार कूप में पड़ गए हैं, पड़े हुए हैं, और हमारे जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और इस कुएं के अंदर भक्ति रूपी रस्सी को छोड़ देते हैं, उनके आदेशों के रूप में एक रस्सी जो है उनको छोड़ देते हैं। हमें बस इस रस्सी को पकड़ना है, अर्थात इन आदेशों का पालन करना है। इन आदेशों का पालन यदि हम करेंगे, अर्थात यदि हम भक्ति के रास्ते को स्वीकार करेंगे, तो फिर इस संसार कूप से, इस अंध कुएं कूप से हम निकल पाएंगे, इस भयानक जंगल रूपी भौतिक जगत से हम निकल पाएंगे, भगवान के धाम को लौट जा पाएंगे, हमारे जीवन को सफल बना पाएंगे। तो रस्सी को पकड़ना हमारे हाथ में है, आदेशों का पालन करना हमारे हाथ में है, ये हमारा कर्तव्य है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह से कृपा तो चाहिए परंतु अपना स्वयं प्रयास भी करना बहुत आवश्यक है। हम इतना ऐसा नहीं कह सकते कि केवल भगवान की कृपा है। कई बार जब हम लोगों से कहते हैं कि आप मंदिर में आइए, तो वो कहते हैं जब भगवान की कृपा होगी तब हम आएंगे। परंतु इसका उत्तर है कि भगवान की कृपा तो हमेशा है, परंतु क्या आप उसे लेने के लिए तैयार हो? हम निमंत्रण दे रहे हैं आपको, तो ये एक रस्सी के समान है, चलो आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, नाम संकीर्तन कीजिए, तो ये भगवान की कृपा आप तक पहुंच रही है। तो आप यदि उस समय कहेंगे कि भगवान की कृपा जब होगी तब आएंगे, भगवान की कृपा तो आ गई है आपके पास, इसे स्वीकार कर लीजिए। तो ये एक केवल भावुकता है ऐसे, और बस एक टालने की बात है कि अब नहीं और कभी हम जाएंगे। तो ऐसे ऐसा करने से फिर क्या होगा, हम जन्म मृत्यु के चक्र में अटके रह जाएंगे। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर आए पृथ्वी लोक में, भारतवर्ष में, उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की और हमें ये अनमोल भेंट, ये उपहार प्रदान किया उन्होंने कृष्ण भक्ति का। कितना आसान बना दिया उन्होंने हम सबके लिए ये, न हमें जंगल में जाना है, न हिमालय में जाना है, न घर परिवार को छोड़ना है, न हमें बहुत बड़ा विद्वान बनना है, न धनी होना है। जो भी हमारी परिस्थिति हो, हमें भगवान के रास्ते में चलना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर एक हमारे लिए व्यवस्था बना के दी है। इस संस्था में मंदिर है, भक्तों का समाज है, सब कुछ यहाँ है। हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए इस भक्तों के संग में सब कुछ उपलब्ध है, बस हमें रस्सी को पकड़ना है। तो जब हम निष्कपट भाव से रस्सी को पकड़ेंगे, हम दोष नहीं देखेंगे अन्यों में, केवल ये सोचेंगे कैसे हम दूसरों की सहायता कर सकें और अपनी भी सहायता करें, इस रस्सी को अच्छी तरह से पकड़ें। जब रस्सी को हम पकड़ते हैं, यदि अच्छी तरह से नहीं पकड़ेंगे तो फिर से वो रस्सी छूट जाएगी हाथ से, फिर से गिर पड़ेंगे। इसलिए रस्सी को ठीक से पकड़ना, अर्थात नियमों का पालन अच्छी तरह से करना, ये हमारे लिए आवश्यक है। बस क्या करना है, हमें भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, बस यही है। भागवतम और भगवद गीता का पठन श्रवण कीर्तन करना है, प्रसाद पाना है, फिर हम काल शक्ति के जो इस हानिकारक और दुखदायक स्वभाव को पराजित कर पाएंगे, हरा पाएंगे। भगवान की कृपा से, और इस तरह से हमारा जीवन हम सफल बना पाएंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा, काल चक्र घूम रहा है, अब नया वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है कल से, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि काल चक्र कैसे घूमता है, इसका प्रभाव कैसे है, और ये रस्सी को पकड़ लेना है, तब हमारे लिए ये वर्ष नवीन हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से जो भी कुछ संबंधित है वो नवीन है, इसलिए उनका नाम है नवीन कृष्ण, नवकिशोर, नित्य नवनवायमान कृष्ण है। कृष्ण से संबंधित जो भी कुछ है वो नित्य नवनवायमान है, सदैव नया लगता है, कभी घिसा पिटा नहीं लगता। तो बस हम इस आने वाले वर्ष में भी हम ये एक संकल्प कर लें कि हम हमारी साधना, हमारी सेवा आदि और भी अच्छी तरह से कर लें। आप सबको नवीन वर्ष की शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि हम सब मिलजुल कर कृष्ण भक्ति के रास्ते में आगे चलेंगे सफलता की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन भी हम करेंगे 5 मिनट। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Ram Ram
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे. जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद. नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल. गौर प्रेमानंदे हरि नाम संकीर्तन की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. धन्यवाद.